अमन की सोने के बाद एक काली बिल्ली अमन की कमरे में चली गई थी। तारा परी और सोनल परी भी उस बिल्ली का पीछा करते हुए अमन के कमरे में चले गए थे, और देखते ही देखते वो काली बिल्ली एक खूबसूरत बला के रूप में आ गई थी। और जब वो अमन को किस करने जा रही थी, तभी उसका साथी भी वहां आ पहुंचा था। उस बिल्ली का साथी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक भयानक काले रंग का एनाकोंडा जैसा बड़ा सांप था। उसने आते ही उस काली बिल्ली, जो कि अब खूबसूरत लड़की थी, उसे अमन को किस करने से रोक दिया और बोला, इस जिन को मत जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम दोनों को जिंदा निकल जाए। तब उसने उस काली बिल्ली, जो कि असल में मलिका थी, उसे एक चिपचिपा सा पदार्थ दिया और बोला, ये इस जिन के बालों में लगा दो, उसके बाद ये पूरे 2 घंटों के लिए तुम्हारे वश में रहेगा, फिर तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकती हो इसके साथ। उस काले सांप की बात सुनकर मलिका बेहद खुश हो गया थी, और उसने वो चिपचिपा सा पदार्थ अमन के बालों में लगा दिया था। और फिर वो अपने असली रूप में आ गई, बेहद खूबसूरत लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी और डार्क रेड लिपस्टिक लगाए वो काली जिन बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अगर कोई उसे देखे तो देखता रह जाए। मलिका ने सर्प को वहां से जाने को बोल दिया था, क्योंकि अमन के साथ पूरे 2 घंटे मस्ती करने का प्लान बना चुकी थी। वो काला सांप उसे अकेला छोड़कर चला गया, सोनल परी के बराबर से होता हुआ वहां से निकल गया था। तब सोनल परी ने तारा परी से कहा था, कुछ करो तारा, कहीं ऐसा ना हो तेरे होने वाले पति की इज्जत ना लुट जाए आज। तारा परी सोनल परी को घूर कर रह गई थी, और वो मलिका को देखने लगी थी कि आखिर ये मलिका करना क्या चाहती है और उसे अमन से बच्चा क्यों चाहिए था। तभी मलिका सोते हुए अमन के पास जाकर एक बार फिर लेट गई, और उसने अमन के माथे को चूम लिया, और उसके चूमते ही अमन एकदम से जाग गया और अपने पास बेहद खूबसूरत लड़की को लेटा हुआ देखकर बोला, मेरे लिए क्या हुक्म है मलिका। अमन के मुंह से अपने लिए ये सुनते ही मलिका बेहद खुश हो गई और जोर जोर से हंसने लगी थीं। वहीं दोनों परियां अमन के मुंह से इस तरह की बात सुनकर चौंक गई थीं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी थीं। तभी मलिका अपने दोनों हाथ अमन के गले में डालकर बोली, अमन सिंह राठौर, तुम्हें पता है तुमसे 2 बार सामना हुआ है, और दोनों बार तुमने मेरी इस खूबसूरत गर्दन को पकड़कर मरोड़ना शुरू कर दिया था, मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश की थी, सो अब सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जिस गर्दन पर तुमने इतने जुल्म किए, अब उस गर्दन को तुम्हें प्यार करना होगा। चलो मुझे चूमना शुरू करो, मलिका ने उसे ऑर्डर दे दिया था। अमन पूरी तरह से उसके वश में था, सो जैसा मलिका उसे कहती वो वैसा ही करता। मलिका के कहते ही अमन उसकी गर्दन पर टूट पड़ा था। जिस तेजी से उसने उसकी गर्दन दबाई थी, उस तेजी से उसने उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। मलिका ने उसे कहा था, तुम जितना वाइल्ड हो सकते हो जाना, लेकिन मुझे तुमसे जो चाहिए वो पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ चाहिए। अमन ने एक ही झटके से मलिका को बेड पर लेटा दिया था, और वो पागलों की तरह उसकी गर्दन को चूमने लगा था। अमन की वाइल्ड होता देख मलिका ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, और एक ही झटके में उसने अमन की शर्ट को उससे अलग कर दिया था। अमन का जिस्म देखकर मलिका की वासना और तेज हो चुकी थी। जहां अमन उसकी नेक पर किस कर रहा था, वहां अब मलिका उसके जिस्म पर टूट पड़ी थी, और वो भी उसी वाइल्डनेस के साथ अमन को चूमने लगी थी। दोनों एक दूसरे को जांगलियों की तरह से चूम रहे थे। तारा परी और सोनल परी तो कुछ सोच या समझ ही नहीं पा रही थी। तभी सोनल परी ने तारा परी को चिकोटी काटी और बोली, अगर ये मलिका और अमन का रिश्ता बन गया, तो अगर अमन ने एक दिल इंसान भी हुआ तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा, सो उन्हें देखना बंद करो और कुछ करो। सोनल परी की बात सुनकर तारा परी मानो ख्वाब से जागी हो, और तभी तारा परी ने अमन की टेबल पर रखा जग उठाया और मलिका के ऊपर झुके हुए अमन के सिर पर डालना शुरू कर दिया था। मलिका अमन के नीचे थी, उसे नहीं पता था कि अमन के सिर पर कोई पानी डाल रहा था, वो तो बस अमन को चूमने में व्यस्त थी। जैसे जैसे अमन के सिर पर पानी डालती रही, अमन के सिर पर जो चिपचिपा पदार्थ लगा था वो निकल गया और अमन अपने होश में आ गया। और होश में आते ही जब उसने मलिका को अपनी चेस्ट को चूमते हुए देखा, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, और उसने चूमती हुई मलिका को बालों से पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरने लगा था। अमन को इस तरह से अपने आप को घूरता देख मलिका को अजीब लगा, लेकिन वो फिर बोली, रुक क्यों गए अमन सिंह राठौर, अब मेरे होंठों को चूमना शुरू करो। अमन उसकी बात सुनकर समझ गया था कि इसने जरूर मुझे वश में किया था, वरना ये मुझे इस तरह से हुक्म क्यों देती। अमन ने कहा, रुको अभी चूमता हूँ। ये सुनते ही मलिका के होंठ पर एक स्माइल सी आ गई थी, और उसने कामोवासना में अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद हुए ही बोली, आ जाओ अमन और चूस लो मेरे होंठों का सारा रस। अमन की गुस्से से आंखें लाल हो रही थी, और देखते ही देखते वो एक भयानक जिन के रूप में बदल गया। मलिका की आंखें अभी भी बंद थी। अमन ने जिन रूप में कहा, तुझे कहा था ना मुझसे दूर रहना, लेकिन तू नहीं मानी, ले अब तू मौत को चूम, अब देख मैं तुझे कितनी भयावह मौत दूंगा। अमन की जिन वाली आवाज सुनकर मलिका ने एक झटके से अपनी आंखें खोल ली, और अमन को जिन रूप में देखकर वो बहुत घबरा गई और चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो जिन महाराज, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो जिन महाराज, प्लीज मुझे जाने दो। अमन काफी ज्यादा गुस्से में था, और मलिका को निगलने के लिए उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया था। दोनों परियां सांसें थामकर इस मंजर को देख रही थीं और सोनल परी की मुस्कुराहट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सोच रही थी कहां अभी ये दोनों जांगलियों की तरह एक दूसरे को चूम रहे थे और कहां अब ये हमेशा के लिए अमन के पेट में जाने वाली थी। अमन के मुंह खोलते ही मल्लिका ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था और जैसे ही अमन उसे अपने मुंह में रखने वाला था ठीक उसी समय वो अमन के हाथ से गायब हो चुकी थी। मल्लिका को गायब होता देख अमन का गुस्सा और बढ़ गया था और वो एक बहुत भयंकर आवाज में चिल्ला पड़ा था। उसकी आवाज सुनकर अपने कमरे में सोई हुई उसकी माँ भी बाहर आ चुकी थी। अमन को जिन रूप में देखकर और वो भी इतना गुस्सा देखकर करिश्मा जी हैरान हो गई थी और वो जल्दी से एक गिलास पानी ले आई और उस पानी में कुछ पड़कर फूंकने लगी और उसे अमन के ऊपर डाल दिया और कुछ ही पलों में अमन नॉर्मल हो गया था और जाकर अपनी माँ के गले लग गया था। दोनों परिया ने भी राहत की सांस ली और उन दोनों माँ बेटे के मिलन को देखने लगी थी। अमन की आंखों में आंसू थे। अपने बेटे के आंसू देखकर करिश्मा जी तड़प कर रह गई थी। तब अमन ने कहा, मॉम अगर मैं वक्त पर होश में नहीं आता तो न जाने आज क्या हो जाता, क्या मुंह दिखाता मैं अपनी तारा को, उस खुशी और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। ऐसा कहकर अमन बुरी तरह से रो दिया। उसके रोता देख सोनल परी की भी आंखें भर आई थी लेकिन उसने अपना आंसू नीचे नहीं गिरने दिया था क्योंकि अगर उसका आंसू नीचे गिरता तो वो आंसू नहीं बल्कि मोती होता।
सोनल परी ने तारा परी को और देखा जो बिना किसी भाव के अमन और उसकी माँ को देख रही थी। सोनल परी तारा परी को इस तरह से देखकर हैरान रह गई थी और वो मन ही मन तारा परी से बोली, क्या तुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है अमन को रोता देखकर? तारा परी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो रोए या हंसे, भला इससे मेरा क्या लेना देना। बस ये पता करो क्या ये वही है जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। सोनल परी ने तारा परी से कहा, तारा तू कितना बदल गई है, पहले तो तू ऐसी नहीं थी। तारा परी सोनल परी की ओर देखते हुए मन ही मन में बोली, हाँ मैं बदल चुकी हूँ। मैं अब वो तारा नहीं हूँ जो किसी की मामूली सी तकलीफ पर मोती बहा दिया करती थी। मैं अब वो तारा हूँ जिसको उस राक्षस ने जिस्म के साथ साथ रूह पर भी जख्म दिए थे। मैं वो तारा हूँ जो हर रात चैन से नहीं सो पाती है क्योंकि उस राक्षस की भयानक हंसी मेरे कानों में गूंजती है। मैं वो तारा हूँ जिसे हर रात को नंगा करके नचाया जाता था और जब तक पूरा जिस्म वो नोच नहीं लेता था तब तक वो छोड़ता नहीं था, पूरे जिस्म पर अपने गंदे दांत काट देता था। अब मुझे किसी मर्द के रोने या हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा दिल नफरत से भरा हुआ है जो कभी भी इन मर्दों को नहीं अपना सकता है। ऐसा कहकर तारा परी वहां से चली गई और सोनल परी अपना सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे होली थी। वहीं करिश्मा जी ने वापस जाने का डिसीजन ले लिया था। करिश्मा जी ने अमन को कपड़े बदलने के लिए कहा और खुद भी तैयार होने चली गई थीं। वो लोग सफ़ेद कपड़ों में वहां से नहीं जा सकते थे इसलिए वो कपड़े बदलने चले गए थे। तभी सोनल परी तारा परी के पास पहुंच गई और बोली, वो लोग अभी निकलने वाले हैं, क्यों ना हम दोनों भी उनके साथ उनकी गाड़ी में ही चलें। तारा परी ने हाँ में सर हिला दिया था। वहीं अमन ने करिश्मा से कहा, जाने से पहले एक काम रह गया है, मैं वो करके आता हूँ। करिश्मा जी ने अमन से नहीं पूछा था कि वो कौन सा काम करने जा रहा था, उन्हें अपने बेटे पर पूरा था इसलिए उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं किया था। अमन वहां से निकलकर सीधा अपनी हवेली के चौकीदार रामलाल के यहाँ गया था। तारा परी अमन के पीछे पीछे ही वहां चली गई थी। वो देखना चाहती थी कि अमन कहाँ जा रहा था। अमन वहां जाकर रामलाल से मिला और बोला, हवेली की चौकीदारी बरसों से आपका परिवार करता आया था और आपको तो जैसे मैंने कहा था, आप काम करें या ना करें आपके परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसलिए मैं आपको हवेली की चाबी देने आया हूँ।